Welcome to this episode of the Influencer Talks. Game of cricket in India is followed like a religion. It runs into the blood of over a billion Indians. But still, there is a cricket control board in India which is struggling for survival. Today, we have Ms. Ghazal Khan as our guest, who is the CEO of the Indian Wheelchair Cricket and member of Divyang Cricket Control Board of India. आइए गजल से बात करते हैं कि वो किस तरह के समस्याओं को देखती हैं और उनके आने वाले प्लान्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट टूर्नामेंट कब और कहां होगा. आइए बात करते हैं गजल खान से. वेलकम टू द शो गजल. गजल जो हैं, मैं बता ही चुका हूं कि शी इज सीईओ ऑफ द इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट एंड ऑल्सो शी इज मेंबर ऑफ दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया. सो गजल, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्रिकेट हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदुस्तान में पूजा जाता है.
बिल्कुल बिल्कुल.
और घर घर में मेरे ख्याल से हर मेंबर बहुत ही एक्सेप्शनल होगा जो किसी को क्रिकेट का शौक नहीं है, अदरवाइज करोड़ों लोग क्रिकेट के शौकीन है हिंदुस्तान में. वही आप जिस तरह का क्रिकेट कर रहे हैं, जो एक दिव्यांगों के लिए कर रहे हैं, तो पहले मुझे आप ये बताएं कि नेक्स्ट कुछ दिनों में आपका एक टूर्नामेंट शुरू होने वाला है दिव्यांगों के लिए, तो उसका मुझे थोड़ा सा डिटेल पहले आप शुरू में बताएं.
जैसे कि आपने बोला कि क्रिकेट हमारे देश में एक कह लीजिए रिलीजन की तरह माना जाता है, लोगों की रगों में खून के साथ साथ क्रिकेट दौड़ता है, हम तो ये मानते हैं.
बिल्कुल.
गली गली में क्रिकेट इतने शौक से खेलते हुए आपको बच्चे बड़े सब नजर आ ही जाते हैं.
जी, जी.
तो एक्चुअली इसका मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कैसे ये आइडिया हम लोगों के पास आया. एक्चुअली हम दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत, एक सब्सिडरी बोर्ड के तहत, इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम, इंडियन फिजिकली चैलेंज स्टैंडिंग क्रिकेट टीम, इंडियन डिसेबल्ड वुमन क्रिकेट टीम एज वेल एज डेफ एंड डम क्रिकेट टीम, ये जो क्रिकेट टीम्स हैं इनको हम चलाते हैं. जैसे नॉर्मल क्रिकेट खेली जाती है उसी तर्ज पर ये क्रिकेट भी खेली जाती है. बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये लोग फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, या ये कह लीजिए कि फिजिकली मोस्टली एबल्ड होते हैं. हम लोगों से, जैसा कि मैंने महसूस किया, हमसे ज्यादा एबल होते हैं, ये सिर्फ देखने में डिसेबल लगते हैं एक्चुअली. तो जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश में मतलब एक गमगीन माहौल सा छाया हुआ था, उदासी छाई हुई थी. तो आईपीएल की जब न्यूज आई कि आईपीएल दुबई शारजा यूएई में ऑर्गेनाइज होगा इस साल, तो क्रिकेट जगत में तो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस थी ही थी. साथ ही हमारे देश में शायद जो वो मायूसी थी वो एक तरफ कम हो गई थी काफी हद तक. तो ये तो अच्छा न्यूज था कि चलो क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन हमारे जो फिजिकली चैलेंज प्लेयर्स हैं उनके लिए ये था कि सर वो लोग वहां खेल सकते हैं, हम नहीं खेल सकते हैं. तो उनको था कि यार हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हमारे पास प्लेयर्स जो थे वीडियोस डालते रहते थे अपने के घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, छत पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेत में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरीके की वीडियोस आती थी जिसने हमें इन्फ्लुएंस किया कि यार हमें भी इन लोगों के लिए कुछ आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए. तो इसी को लेकर मेरे पिताजी श्री हारून रशीद, जो कि फाउंडर है दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के, आपने दिव्यांग प्रीमियर लीग डीपीएल ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया. इसे प्लान करते करते 5 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे बड़े टूर्नामेंट को अंजाम देना.
जी.
तो यहाँ से इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज करने का सोचा. अब ये दुबई में शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जाएगा. ये बहुत ही गर्व की बात है कि शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम पे, जहाँ पे नेशनल टीम खेल के आई, आईपीएल में पूरे मतलब वर्ल्ड के क्रिकेटर्स ने खेला है, और वहां हमारे दिव्यांग जन प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बहुत ही प्राउड फील होता है.
कब से है गजल ये, अब कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा?
ये 8 तारीख से, 8 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. आफ्टर दैट 15 अप्रैल को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा.
और कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कहां-कहां से कर रही हैं?
इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं. ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों ने प्लेयर्स जो है वो इसके लिए सेलेक्ट करे हैं. जैसे आईपीएल में कोई जरूरी मायने नहीं रखता कि आप किस स्टेट के प्लेयर हैं, ऐसे ही हमने इसमें भी अलग अलग स्टेट से जैसे टीम्स ऑर्गेनाइज कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, 6 टीम्स हमने इसमें बनाई हैं, जिनका नाम है कोलकाता नाइट फाइटर्स, चेन्नई सुपर स्टार्स, मुंबई आइडल्स, गुजरात हिटर्स, दिल्ली चैलेंजर्स एंड राजस्थान रजवाड़े। ये 6 टीम्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें 90 प्लेयर्स फिजिकली चैलेंज क्रिकेटर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
दैट इज एन अचीवमेंट गजल, मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि है आपके लिए। लेकिन एक चीज बताइए,
एग्जैक्टली
क्रिकेट, अगर हम जनरल क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो बहुत स्पॉन्सर्स मिलते हैं, फाइनेंसर्स मिलते हैं, और दैट इज ए बिग बिजनेस इन इटसेल्फ। तो आपको किस तरह के प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस मिले के फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए जो आपने फेस किए?
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आपने किया है, ये जो पार्ट है स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना या फिर स्पॉन्सरशिप लेके आना, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट चैलेंजिंग पार्ट है इस फिजिकली चैलेंज क्रिकेट में। क्योंकि नॉर्मल क्रिकेट को किसी से कहने की जरूरत नहीं रहती, उनके पीछे स्पॉन्सर्स होते हैं कि आप हमारी स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे पार्शियलिटी देखी जाती है, यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो नॉर्मल क्रिकेटर्स को मिलता है। जबकि हमारा संविधान कहता है कि राइट टू इक्वालिटी हम लोगों का अधिकार है, और फिर भी राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते नहीं है, या ये कह लीजिए कि शायद कुछ लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे स्पॉन्सर्स के पास जाना पड़ता है, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है ये। लोगों के पास जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर प्लीज आप ड्रेस के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए, सर आप किट के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए, या आप ट्रेवल अलाउंस के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए, या विनिंग प्राइज के लिए स्पॉन्सर कर दीजिए। इस तरीके से हमें कई लोगों को इकट्ठा करके स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है। जबकि नॉर्मल अगर क्रिकेटर्स होते हैं तो उनके पास तो ऑफर्स ही ऑफर्स होते हैं, पर प्लेयर स्पॉन्सरशिप होती है वहां तो ऐसा चलता है। लेकिन इसमें ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, हद से ज्यादा चैलेंजिंग है एक्चुअली।
आपको इसमें किसी भी तरह का कोई गवर्नमेंट सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फ्रॉम बीसीसीआई कुछ मिलता है?
गवर्नमेंट से बस इतना सपोर्ट होता है कि जब हम इंटरनेशनल टूर या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर वहां से हमें परमिशन मिल जाती है, और इसके अलावा और कोई बेसिक सपोर्ट नहीं मिलता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ना ही किसी हेल्प को लेकर, किसी प्लेयर की हेल्प को लेकर या किसी टीम की हेल्प को लेकर। इवन जब हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जो हमारी नेशनल इंडियन टीम्स हैं, चाहे वो व्हीलचेयर क्रिकेट टीम हो, स्टैंडिंग टीम हो, तो इनके भी अगर हम टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी हमें सेम स्ट्रगल स्पॉन्सरशिप के लिए करनी पड़ती है। क्योंकि एक छोटा सा भी अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो मिनिमम बजट 1-1.5-2 लाख रुपए आता ही है मिनिमम। एक छोटा सा टूर्नामेंट, फ्रेंडली टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करती है तो उसके लिए, और ये फंड इकट्ठा करना ये इतना चैलेंजिंग होता है कि बस ये कह लीजिए कि अभी हमारा शायद स्ट्रगल पार्ट चल रहा है कि धीरे धीरे हम लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और इतना बड़ा टूर्नामेंट अब हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो ये अच्छा है कि चलो हम फाइनली एक प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच रहे हैं।
जी जी, नहीं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप इतने बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में एक अपना इसके लिए टूर्नामेंट रख रहे हैं। लेकिन अब इसकी मुझे थोड़ी शुरुआत बताइए कि ये जो आपका दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो आप कह रहे हैं हारून रशीद जी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने फाउंड किया, तो वो कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, और तब से अब तक का क्या क्या उसमें चैलेंजेस आए, ये आप थोड़ा सा बताएं।
एक्चुअली हारून रशीद जी मेरे पिताजी हैं और हमारा सौभाग्य है, तो इसकी शुरुआत ऐसे भी बैकग्राउंड जो उनका रहा है वो एज ए बीइंग क्रिकेटर रहा है। एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ था जिसकी वजह से वो आगे अप्रोच नहीं कर पाए, लेकिन रणजी ट्रायल तक वो पहुंचे थे। इसके अलावा क्रिकेट एकेडमी वो चलाते थे बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए, फ्री क्रिकेट एकेडमी थी जी। उसमें एक प्लेयर आया जिसका नाम था दीपक छोकर। तो वो प्लेयर जो था दोनों पैर से पोलियोग्रस्त था जी। और डिसेबल्ड था, लेकिन उसके अंदर जुनून बहुत था कि नहीं मेरे को खेलना है। एक सेकंड को देख के लगता है कि यार ये क्या खेलेगा, लेकिन मन रखने के लिए उसको पिताजी ने बोला कि नहीं ठीक है तुम खेलो। लेकिन मेरे फादर ने कभी उसको मतलब डीमोटिवेट नहीं किया कि नहीं खेल सकते। फिर जब उन्होंने देखा कि इस बच्चे का खेल इतना अच्छा है, जो नॉर्मल टीम होती है उसके साथ में वो बच्चा खेलता था, तो ये चीज मेरे फादर को इन्फ्लुएंस कर गई कि इन लोगों के लिए भी कोई क्रिकेट टीम होनी चाहिए। तो 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2007 से अभी तक 2021 में हम हैं और कंटिन्यू करे हुए हैं हम इस चीज को। पहले डिसेबल्ड स्पोर्टिंग सोसाइटी नाम था, लेकिन बाद में इसे एज पर द लॉस सुप्रीम कोर्ट से रजिस्टर्ड किया गया इसे एज दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमारे पास लीगल राइट्स है सब चीजें कि हम इंडियन जैसे नेशनल टीम बीसीसीआई द्वारा चलाई जा रही है, वैसे ही हम भी दिव्यांग जन क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
वंडरफुल
जी।
आप पूरे देश में, आप कह रहे हैं आपके कई क्रिकेट टीम्स हैं अलग अलग स्टेट लेवल पर, तो उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से आप अपने प्लेयर्स को तलाशते हैं, किस तरह उनकी ट्रेनिंग होती है और प्रैक्टिस कैसे कर पाते हैं, वो ये सब थोड़ा सा बताएं इसके बारे में।
ट्रेनिंग के लिए तो देखिए एक्चुअली क्योंकि प्लेयर्स जो है उनका जो
हम पहले कहते हैं
सिलेक्शन ओके सिलेक्शन या जब कभी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं या कोई ऐसा आगे प्लान किया जा रहा होता है तो फिर ट्रायल लेते हैं हम लोग एक जगह एक वेन्यू डिसाइड करके ट्रायल लेते हैं। उस ट्रायल में प्लेयर्स जो भी होते हैं फिजिकली चैलेंज वो आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं और जो बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं प्लेयर्स उनको सिलेक्शन मिल जाता है। अदरवाइज क्योंकि सभी जो प्लेयर्स हैं मोस्टली 90% जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है, उनका थोड़ा सा फाइनेंशियली वीकर है वो लोग, तो फिर उनको आना फिर फिजिकली चैलेंज्ड है तो उनके लिए कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाना फिर वहां पे सब चीज मैनेज करना। तो जो ऐसी सिचुएशंस रहती हैं तो फिर वहां पे हम प्लेयर से बर्डन नहीं देते कि आप आओ वीडियो शूट कराते हैं कि आप अपना खेलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कीजिए। उस वीडियो में एक्चुअली दिख जाता है कि प्लेयर कितना ज्यादा खेल को लेकर अपनी रुचि रखता है, देन उसका सिलेक्शन करते हैं।
ओके और फिर ट्रेनिंग्स उसको किस तरह से वहां पे दी जाती है, क्या
ट्रेनिंग ट्रेनिंग के लिए क्योंकि सबको एक जगह करके ट्रेन करना नॉर्मल क्रिकेट टीम्स की तरह ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत स्ट्रगलिंग फेस अभी इसका दिव्यांगजन क्रिकेट का चल रहा है। तो जो प्लेयर अपना कोच हायर कर सकते हैं वो लोग कोच हायर करते हैं या कुछ ऐसे भी है एक्चुअली जब इन प्लेयर्स का खेलते हुए देखते हैं ना जुनून जज्बा तो कुछ लोगों के मन में खुद ही आता है जो अच्छे स्कूल के कोच वगैरह होते हैं या कॉलेजेस के क्रिकेट कोच वगैरह होते हैं वो खुद ही कहते हैं कि नहीं आप आओ हम आपको कोचिंग देंगे फ्री कोचिंग देंगे। तो जिस तरह से भी वो मैनेज कर सकते हैं, कोई खुद ही अपने आप का गुरु है, कोई गुरु हायर कर लेता है या कोई किसी को गुरु मिल जाता है, तो इस तरीके से वो अपने ट्रेनिंग वगैरह करते हैं।
मतलब आप भी खुद एज ए फ्रॉम द एसोसिएशन साइड लोगों से जाके कांटेक्ट करते हैं कि हमारे लोगों को आप ट्रेन करें, इस तरह भी आप कुछ होता है?
हाँ अगर हम जहां तक अप्रोच कर सकते हैं तो वहां तक जी। जैसे अगर हमारी किसी सिटी में कोई कोच है जो जिनसे हमारा अच्छा ताल्लुकात है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि सर इनको भी कोचिंग दीजिए।
ओके ओके अभी आप क्या समझते हैं कि आज की स्थिति में जहां आप एक इंटरनेशनल ऑलरेडी एक टूर्नामेंट कर रहे हैं, फ्यूचर आपके प्लान्स आप क्या सोच रहे हैं कि इसको कहां लेकर जाएंगे और किस तरह से उसको मे बी 3 से 5 साल के बीच में किस तरह से आपका इसके लिए प्लान है?
एक्चुअली सक्सेस कम्स फ्रॉम ईच स्टेप और ये हमारा कह लीजिए कि हायर लेवल पे जाने के लिए पहला स्टेप है डीपीएल। इस डीपीएल के बाद से हमें जो भी स्टेप्स लेने हैं वो हायर देन हायर देन हायर देन हायर इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप क्लाइम करना है। तो प्लानिंग तो बहुत है और भी कंट्रीज में प्लानिंग है, बातें चल रही है, बट हम प्रेफर करते हैं कि जब तक कि 90% प्लान सक्सेस ना हो जाए तो उसे रिवील ना किया जाए, क्योंकि क्या होता है फिर प्लेयर के जज्बात उस खेल से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत उम्मीदें लग जाती हैं, लेकिन लास्ट में अगर पता चलता है कि ऐसा नहीं है तो फिर काफी ज्यादा इंटरनली वो आहत होता है।
जी जी जी। अच्छा इस तरह के फिजिकली चैलेंज्ड जन के लिए बहुत सी एसोसिएशन है ग्लोबली अलग अलग देशों में, आप किसी तरह का उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं या प्लान है ऐसा करने का?
देखिए इसके लिए हमें पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करना पड़ता है। अगर पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो व्हीलचेयर क्रिकेट है हमारा, उसके जो फाउंडर है वो मेरे फादर ही हैं, मिस्टर हानून रशीद जी। इन्होंने जो व्हीलचेयर क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है वो आपके ही द्वारा आया है, इस पूरी कंट्री में ही नहीं जो भी और अदर कंट्रीज में भी व्हीलचेयर क्रिकेट चल रही है तो उसमें भी। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इजीली आप किसी से भी दुनिया में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो यही एक माध्यम रहता है कांटेक्ट करने का। हम अपने जो हमारा आइडिया है कॉन्सेप्ट है उसको शेयर करते हैं, पसंद आ जाता है लोगों को तो फिर वो हमारे साथ इंटरेस्ट दिखाते हैं आगे ज्वाइन होने के लिए, आगे कुछ करने के लिए अप्रोच करते हैं। अदरवाइज मतलब कह लीजिए कि कम ही ऐसा होता है कि कहीं से रिजेक्शन मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है।
जी जी
जी।
अच्छा जो प्लेयर्स एक नॉर्मल क्रिकेट है और एक डिसेबल्ड लोगों के लिए क्रिकेट है, दिव्यांग लोगों के लिए, तो डेफिनेटली प्लेइंग रूल्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट होते होंगे।
जी
तो
एक्चुअली हाँ एक्चुअली जो हमारी स्टैंडिंग क्रिकेट टीम है, जो फिजिकली चैलेंज स्टैंडिंग क्रिकेट टीम है, स्टैंडिंग मींस जिनका मतलब खड़े होके वो खेल सकते हैं, जी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो नॉर्मल क्रिकेट के रूल्स हैं वही नॉर्मल क्रिकेट ये यहाँ भी अप्लाई होते हैं रूल्स, जो आईसीसी के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिकेट के लिए बनाए गए वही फॉलो किए जाते हैं।
जी जी जी।
बस फर्क सिर्फ एक छोटा सा होता है कि जैसे अगर किसी का एक पैर खराब है, लाइक वो बैसाखी लेके खेल रहे, तो उनको रनर दिया जाता है, बस एक ही छोटा सा चेंज है, बाकी सेम बाउंड्री सेम पिच सेम बैट सेम बॉल एवरीथिंग इज सेम।
ऑलराइट। और जो व्हीलचेयर है इनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं,
इनके लिए बस जो पिच होती है वो 22 यार्ड्स की ना होके 18 यार्ड्स की होती है, अदरवाइज रूल्स इनके लिए भी सब सेम है, बस थोड़ा सा क्योंकि वाइड बॉल और नो बॉल ये सब चीजें, क्योंकि प्लेयर खड़ा नहीं है वो बैठा हुआ है व्हीलचेयर पे, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इन रूल्स में, थोड़ा सा अमेंडमेंट है, अदरवाइज मोस्टली जो रूल्स हैं वो आईसीसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं।
बिटवीन द विकेट्स अगर उन्होंने रन लेने हैं तो वो चेयर पे ही लेते हैं, उसको
व्हीलचेयर पर ही रन लेते हैं। जी
अच्छा, व्हीलचेयर जो होती है वो इलेक्ट्रिक होती है या वो मैनुअल होती है?
मैनुअल होती है, स्पोर्ट्स व्हीलचेयर होती हैं। एक्चुअली व्हीलचेयर क्रिकेट में जो शब्द है व्हीलचेयर, ये सबसे बड़ी एसेसरी है, ये सबसे बड़ा हथियार है।
Absolutely.
और यही हथियार पूरी जो भी हमारी स्टेट की टीम से अभी तक 12 स्टेट्स जो है वो रजिस्टर्ड है हमारे साथ, इसके अलावा बहुत से जो स्टेट्स हैं वो अंडर द वर्किंग है, तो उनका चल रहा है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो जो व्हीलचेयर्स होती हैं वो एक भी टीम हमारी शायद ऐसी होगी, अभी तेलंगाना टीम को छोड़कर एक टीम भी ऐसी नहीं है जिसके पास प्रॉपर व्हीलचेयर्स हो, प्रॉपर स्पोर्ट्स व्हीलचेयर हो। किसी के पास 7 व्हीलचेयर है, किसी के पास 10 व्हीलचेयर है, किसी के पास 8 व्हीलचेयर है, एक दूसरे के से लेकर बोरो करके फिर ये लोग खेलते हैं।
जी,
जी तो इसमें बस अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चाहे तो इसमें जो व्हीलचेयर्स है, जो स्पोर्ट्स क्वालिटी व्हीलचेयर्स होती है वो प्रोवाइड कर सकती है, साथ ही जो क्रिकेट किट्स होती है वो प्रोवाइड कर सकती है, ताकि ये प्लेयर्स को रुकावट ना आए इनका परफॉर्म करने के लिए।
बिल्कुल, मेरा अगला एक्चुअली सवाल वही था आपसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मिनिस्ट्री से क्या है, या बहुत से एनजीओज हैं जो इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड एनजीओज जो इसमें बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं, तो आपने मिनिस्ट्री में अप्रोच किया है फाइनेंशियल हेल्प के लिए, या आप क्या चाहते हैं वहां से, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन?
जी अप्रोच तो देखिए हमारी हमेशा रहती है कि हेल्प मिले, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है. अभी कह लीजिए हालांकि इतने साल हो गए लेकिन फिर भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है. मोस्टली जो लोग हैं उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी डिसेबल्ड क्रिकेट भी होता है, ऐसे लोग भी क्रिकेट खेलते हैं या व्हील चेयर क्रिकेट भी होता है. तो अप्रोच तो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अप्रोच कर रहे हैं, बीसीसीआई से अप्रोच कर रहे हैं हेल्प के लिए, लेकिन उस हद तक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो एक्चुअली मिलना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको बताया व्हीलचेयर क्रिकेट में व्हीलचेयर्स ही नहीं है प्लेयर्स के पास में, टीम्स के पास में, और भी जो भी स्टैंडिंग टीम है उनके पास अगर खेलने के लिए किट्स नहीं होंगी, क्रिकेट बैट नहीं होगा तो फिर वो कैसे खेलेंगे. ये मेन एसेसरीज होती हैं. और फाइनेंशियली भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 90% जो प्लेयर्स हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वीकर है, वीकर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है. बस एक जोश जुनून होता है कि देश के लिए खेलना है, बस इन रिटर्न उन्हें पता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला. उनको कोई ऐसी, अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मल अगर कोई टूर्नामेंट होता है, इंडिया इंग्लैंड का भी टूर्नामेंट जो हुआ है, तो इसमें प्राइज मनी भी था, सब चीज थी, प्लेयर्स को भी पर फीस दी गई होगी, प्लेयर्स को भी, हर एक प्लेयर को, इनफैक्ट हर एक ऑफिशियल को जो भी इस टूर्नामेंट में थे उनको कुछ ना कुछ मिला ही होगा, डेफिनेट सी बात है. लेकिन इस क्रिकेट में प्लेयर्स को पता है कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा. वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश सीरीज है, इंडिया नेपाल सीरीज है, या एशिया कप है. ये भी मैं बताना चाहूंगी कि 2 बार हम एशिया कप कर चुके हैं पार्टिसिपेट. एक बार तो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था 2015 में, जिसमें हम विनर रहे थे, एशिया कप विनर. और 2019 में नेपाल काठमांडू में एशिया कप ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हम रनर अप रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान. नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अनफॉर्चुनेट लग रहा हमारा, जिसकी वजह से हम रनर अप रहे. लेकिन बस जो सपोर्ट चाहिए था वहां पे, इस लेवल के भी अगर टूर्नामेंट हो रहे हैं तो हमारे देश का नाम हो रहा है, हमारे देश के लिए खेला जा रहा है. वहां पे कोई एसोसिएशन नहीं जीत रही, वहां पे कोई बोर्ड नहीं जीत रहा, वहां पे कोई प्लेयर नहीं जीत रहा, वहां पे जो जीत रहा है वो है हमारा देश, हमारा इंडिया जीत रहा है. तो इंडिया जीत रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए ये हेल्प करने के लिए कि हमारे देश का नाम ये लोग रोशन कर रहे हैं. दिव्यांग जन होके, फिजिकली चैलेंज्ड होके, इतनी प्रॉब्लम फेस करके ये लोग आते हैं, ट्रेवल करते हैं, फिर उसके बाद खेलते हैं. कुछ तो प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में उनको इस चीज का रियलाइज नहीं रहता है कि कब उनको यूरिन के लिए जाना है या कुछ भी, तो वो यूरिन बैग कैरी करके खेल रहे होते हैं मैदान पे. जब ये चीजें आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करती है कि यार जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए. ये एक जो इन खिलाड़ियों को मैंने खेलते हुए देखा, यही इनको देख के ही मेरे अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन मिला कि मेरे को इनके लिए कुछ करना है.
बिल्कुल.
तो सरकार को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सभी को आगे आना चाहिए इनकी हेल्प करने के लिए. जी
बिल्कुल. अच्छा गजल, मैं आपसे एक पूछूंगा क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं, आप कह रहे हैं आप खुद इंस्पायर होते हैं उनको देखकर, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में हमें बताइए जो आपकी टीम का हिस्सा हैं और जो एक एग्जाम्पल दूसरों के लिए बन सकते हैं, एक आध किसी का.
जी बिल्कुल. हमारे प्लेयर है एक जो कि जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, रमेश सरदाबे, इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन है.
ऑलराइट,
सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन.
जी.
और अगर मैं उनका आपको बैकड्रॉप सीन दिखाऊं तो ही इज मतलब फाइनेंशियली टू मच पुअर. और उनकी इवन उनकी जो माता जी हैं उनको काम करना पड़ता है क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड है, दोनों पैर से पोलियो ग्रस्त हैं रमेश जी. तो वो शायद एबल नहीं है, इन ये सोचना चाहिए कि ये लोग शायद इतना एबल नहीं होते कि हर जगह इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले या फिर ये काम करें. लेकिन उनको कोई जॉब नहीं है, उनकी मदर को इस एज में आके उनको घर का काम करना पड़ रहा है. ऐसे ही और भी प्लेयर्स हैं, मुकेश कंचन है, उनका एक पहले दोनों ही पैर पोलियोग्रस्त थे लेकिन बाद में एक पैर थोड़ा सा रिकवर हुआ, देन एक लेग में उनके प्रॉब्लम है, वो बैसाखी लेके खेलते हैं. और इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एक एम्प्टी मतलब हाथ उनका कटा हुआ है, मयूर धुमसिया, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है, दिल्ली से इंडिया गेट से गेटवे ऑफ इंडिया तक साइकिलिंग की थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। साथ ही हमारा लक है कि वो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हर खिलाड़ी की अपनी एक स्टोरी है।
जी 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 जी
जी
बिल्कुल, जो आप बता रहे हैं आप देखिए खुद ही मतलब सोच के भी ऐसा होता है कि इन लोगों को किसी जॉब की जरूरत है ही नहीं, मतलब ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, गजल मैं आपको एक तो पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आप पहले इतना बड़ा शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में एक पहला टूर्नामेंट कर रहे हैं अपना 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। और
मैं
डेफिनेटली इस प्रार्थना करूंगा कि बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा हो, ऑल द बेस्ट। और थैंक यू आपने समय निकाला, एंड जब आपका ये खत्म हो जाएगा 15 तारीख के बाद तो फिर आपसे एक बार बात करेंगे।
बिल्कुल डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू गजल, थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, आई होप यू हैड योर लर्निंग्स फ्रॉम दिस एपिसोड and got inspired to keep moving towards attaining your goals. Please share this episode with your friends by visiting my website www.theinfluencertalks.com. If you have stories to share about people who influenced you positively, please do share with me and I am waiting to hear from you. I'll catch up with you next week with a new episode of The Influencer Talks. Till then, be safe and be healthy.